सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 35 की रोशनी में देख रहे थे कि अब से लेकर रमज़ान तक हमने क्या करना है, अपने आप को चेक करना है किस में कमी है किस में बेशी है। अब यहाँ से इन सारे 10 आमाल जिनको हमने देखा इनकी अमली तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि बस दफ़ा हमें किसी की तस्वीर देखकर या किसी की मिसाल देखकर बात ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि जब आप किसी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ओह अच्छा ये कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ, और मैंने नहीं किया तो इसका मतलब कि मैंने ज़्यादा की है। तो इंशाल्लाह ताला रैंडमली हम देखेंगे कि हमारे असलाफ अपने रमज़ान में ख़ास तौर पे और अपनी अमली ज़िंदगी में किस दर्जे के मुसलमान थे। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलाए। हमारे लिए सब लोग रोशनी के मीनारे होते हैं, अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए। तरतीब के साथ चलूंगी, असलाफ और तिलावत कुरान मजीद के हमारे बुज़ुर्ग जिसमें सबसे पहले सहाबे करान थे और उसके बाद के लोग थे, उनका कुरान पाक के साथ क्या ताल्लुक़ था ख़ास तौर पे रमज़ान के नाते से। तो अगर आप देखें तो रमज़ान में सहाबा कराम हर नेकी के लिए कमर बस्ता हो जाते थे। जैसे पीछे तस्करा हुआ ना कि जब आदत पड़ जाती है 11 महीने नेकियां करने की और मुस्लिमीन मोमिनीन कानतीन खाशीन और वो सारी लिस्ट सामने रख लें तो फिर रमज़ान में तो बंदा और भी करेगा ना। ये ऐसे ही है कि जैसे एक कारोबार करता है एक शख्स, तो जब कोई सीज़न होता है तो फिर ज़्यादा मेहनत करता है क्योंकि उस वक्त उसको ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन ये तो नहीं कोई करता कि सिर्फ दुकान खोल ली ईद से 4 दिन पहले, फिर तो नहीं चलेगी ना। तो बस लोग नेकियों के नाम पर सिर्फ रमज़ान के साथ जुड़ जाते हैं। तो सहाबे कराम जो थे वो रमज़ान में हर वो नेकी जो आम दिनों में तो करते ही थे लेकिन रमज़ान में वो उसको बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन दो इबादत ऐसी हैं कि जिसमें ख़ास तौर पर उनका खुशू बढ़ जाता था, आप कह लें कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, खसूसियत से उसका अहतमाम करते थे, और एक थी कुरान की तिलावत और सखावत। तिलावत और सखावत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर साल रमज़ान में एक बार कुरान मजीद पढ़ा जाता। जिस साल आपने वफात पाई आपके सामने दो बार कुरान मजीद मुकम्मल किया गया। ये बुखारी की रिवायत है किताब बदाउल वहश में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ये रिवायत चलती आई कि आप कुरान पाक की तिलावत करते थे, जितना कुरान पाक नाजिल हुआ होता था उतने को दोहरा लेते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, सखावत थी आपकी, और आप उस वक्त ज़्यादा सखावत करते जब रमज़ान में आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मिलते। अब यह हदीस सुनिएगा, आपने बहुत दफ़ा लफ्ज़ सखावत सुना है लेकिन ये बात कि वो सखावत है किस चीज़ की थी, कुरान की। यानी आम दिनों में भी दूसरों के साथ कुरान शेयर करते थे, कुरान सिखाते थे समझाते थे, बट रमज़ान में कैसे होती थी आपकी ये बात कि जब रमज़ान में आपसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिलते और आपके साथ कुरान हकीम को दोहराते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ आंधी से भी ज़्यादा रमज़ान में सखावत किया करते। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अगर आपको नंबर भी चाहिए तो वो भी बाद में मुझसे ले लीजिए, 902 बुखारी का और 2308 मुस्लिम का नंबर है। क्या पता चला कि हमने भी यही करना है, क्यों सवाल पैदा होता है क्यों। अब देखिए कि कलाम मजीद जो है ना ये रब्बुल इज़्ज़त का कलाम हमीद है जिसकी तिलावत करने से अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है, मारफत हक नसीब होती है, नफ्स की गिरें खुलती हैं। आप तिलावत को वो ना समझे जो हम करते हैं 5 पारे 6 पारे, वो तिलावत जो शुरू में आपको नहीं सुनाई थी कि हर लफ्ज़ से पता चलता है कि ये रोने वाली बात है या हंसने वाली है, जज्बात के साथ हो। तो जब कुरान सुना जाता है ना उससे एक और फ़ायदा क्या होता है कि नफ्स के अंदर जो अलाइशें होती हैं, आपको तो दिलों में कीने होते हैं, बुगज़ होते हैं, हसद होता है, गुस्सा होता है, गिला होता है, इंसानी मामलात में बस जब अल्लाह ताला के साथ भी गिले होते हैं, मेरे साथ ज़्यादती की नौज़ बिल्ला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुरान की तिलावत करने से नफ्स पाकीज़ा हो जाता है, साफ हो जाता है, अंदर से एक वो जिसको आप कहते हैं ना एनर्जी मिलती है, नशात बालीदगी नेकियों की नशो नुमा होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कहते हैं कि ख्वाहिशात के अड़ियल घोड़े आपके हाथ में आने लगते हैं। आज की दौर में मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं उनके ख्याल में, मैं इससे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ लेकिन बहरहाल ये इशू तो मौजूद ही है, तो आप देखें कि आप कुरान का तर्जमा सिखा कर उनको तिलावत पर लगा दें। आप देखेंगे कुरान कुछ भी आपको ना दे, सुबह उठ के अगर आप उसका एक हिस्सा पढ़ लेते हैं और अगर आपको समझ आता है फिर तो जो सोने पे सुहागा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नफ्स पे काबू होगा। अपने ऊपर ले, हमारे दिल में ख्वाहिशात बड़ी हैं, बड़ी चीज़ों की, जुन नाज हो बुशावाद की तस्वीर बने बैठे हैं, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब ऐसी चीज़ों को अगर अपने ऊपर लेकर हम कुरान को पढ़ें और आज से नियत कर लें कि अल्लाह मैं ये जो कुरान पढ़ती पढ़ाती हूँ ना, मेरी ख्वाहिशें दब जाएं, और बिलीव मी रियली ये बात इतनी सच है कि आप कुरान के साथ जुड़े रहें, आहिस्ता आहिस्ता गैर मखसूस तरीके से आपकी ख्वाहिशात कम होती जाएंगी। एक होते ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, दुखी हुए, परेशान हुए, दूसरा यह कि वो ख्वाहिश ही ना रही, फर्क है। कुरान के सफर के आगाज में पता क्या होता है कि ख्वाहिशें होती हैं फिर बंदा पूरी नहीं करता, तो इरिटेशन तो होती है ना, जैसे भूख लगी और आप ना खाएं तो अंदर कुछ ना कुछ तो वीकनेस होती है ना, ये इब्तदाई सफर होता है। लेकिन आप अल्लाह के लिए कहते हैं नहीं, मैंने अब और नहीं कपड़े बनाने, मैंने और जूते नहीं लेने, मैंने और ज्वेलरी नहीं लेनी, मैंने घर में बर्तन इतने क्या करने हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं ले आते हैं, बाजार जाते जाएंगे लेते आएंगे, आखिर ला के रिग्रेट होगा जो भी है। एक वक्त ऐसा आएगा कुरान के साथ जुड़े रहें कि आपकी ख्वाहिश ही खत्म हो जाएंगी, और जिसकी ख्वाहिश ही खत्म हो गई फिर वली मन खाफ मकाम रब्बी ही व नहा नफ्स अनिल हवा। ये तो सबसे खूबसूरत चीज होती है कि ख्वाहिश ही ना रहे। बस आप देखिए, भूख है नहीं खा रहे और भूख ही ना लगे या रगबत ही ना आए, कौन सा बंदा खुशकिस्मत है? आपके बच्चे वो चॉकलेट देख के बेचैन हो जाते हैं और आपका चॉकलेट खाने को दिल ही नहीं करता। ये वक्त लाने के लिए कुरान के साथ ताल्लुक रखे। लेकिन मजे की बात है, तन्हाई में तवज्जो से, यकसुई के साथ, दिल सोजी के साथ, इखलास के साथ कुरान पढ़ें। खुद साहिब कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर ये कुरान नाजिल होता था, वो सहाबा कराम से कहते थे कि आओ और मेरे साथ कुरान पढ़ो। तो हमारा मिजाज, हमारे घरों का माहौल कुरान वाला होना चाहिए। आपके हस्बैंड घर में आए तो कुरान की आयतें पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप जल्दी जल्दी में काम कर रही हैं तो बस लैलीजा यक्षा व नहारीजा तजल्ला। एक वक्त होता है कि लोग गाने गा रहे होते हैं ना अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए, कुछ बाथरूम सिंगिंग कर रहे होते हैं, बिलीव मी आपका कुरान से ताल्लुक जोड़े, बाथरूम में भी कुरान की आयतें मुंह से निकल जाएंगी और अल्लाह माफ करेगा आपको इंशाल्लाह ताला। आप देखिए कि आप सुनते हैं ना फजाइल कुरान बुक में, आप पढ़िए, उन्होंने वाकया कोट किया हुआ है कि एक सहाबी के जिस्म में तीर खुब गया और निकालना मुश्किल है, कहने लगे मैं तिलावत करता हूँ उस दौरान निकाल लेना। तिलावत करते रहे बाद में ख़त्म की, कहा क्या हुआ सुनाओ, निकाला नहीं, कहा वो तो हमने शुरू में निकाल लिया था। बाज लोग कहते हैं नमाज में तिलावत कर रहे थे, बाज कहते सिर्फ तिलावत कर रहे थे। तो जब उनको तीर खुबे हुए जिस्म से निकलने का एहसास नहीं हुआ तो ये आपके मेरे गम याद रहेंगे। और मैं यहाँ फिर दर्द मंदी से और एक बहन होने का मशवरा दूंगी कि अपने जाती गमों को कुरान के अंदर खुबो दें। ना माँ, ना बहन, ना बाप, ना शौहर, ना बेटा, कोई आपका दुख दर्द नहीं सहेगा। ये सारे हम दर्द झूठ है, लफ्ज हम दर्द, कोई हम दर्द नहीं होता। कुरान की दुआ है अल्लाह के नबी ने जो हदीस में सिखाई हुई है, अंत चलिल कुरान अलअज़ीम रबीय कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाब ग़म्मी व हम्मी। और शुरू से पढ़े ये दुआ तो अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अम्मतिका नासियति बियदिका। अपनी दोस्तियां कुरान से करें, कुरान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कुरान इज़ माई कंपेनियन, कुरान मेरी कब्र का साथी, मेरी तन्हाइयों का साथी। कुरान 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 के आपकी ज़ुबान पे भी कुरान हो किस तरीके से। और आपको पता है कि सही मुस्लिम की रिवायत है 1862 नंबर की कि अच्छी तरह कुरान की तिलावत करने वाला क़यामत के दिन मुकर्रब और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। आप कहते हैं मैं डिप्रेस बड़ी रहती हूँ, मेरा पढ़ने में ध्यान नहीं आता, स्ट्रेस में होती हूँ, ये है वो है। आप जिस कैफियत से भी दो चार हैं, आप वो हिस्सा कुरान का जो आपको समझ आता है उसको ऊंची पढ़ें। थोड़ी देर में आपको याद भी नहीं रहेगा कि स्ट्रेस क्या था, दुख क्या था, गम क्या था। फिर आप देखिए कि ये पढ़ना आसान कब होता है, जब इस बात पर ईमान है कि एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां। तिर्मिजी की रिवायत है 2327 नंबर की कि कुरान के एक लफ्ज़ पर 10 नेकियां मिलती हैं, और 10 फिर 20 और अलिफ लाम मीम भी हरूफ हैं, सुनते हैं ना करें। फिर आप देखिए कि कुरान की तिलावत क्यों, इससे सकीनत पहुंचेगी आपको। सकीनत क्या होती है? ट्रैंक्विलिटी। आज कितने लोग हैं जो पीस की बातें करते हैं, पीस, इत्मीनान, सुकून। मैं आप सबसे पूछती हूँ, पर्सनल बात है वैसे, तो ना जवाब दें तो मैं मैंड नहीं करूंगी। आप में से कितने लोग कहते हैं कि हम बहुत मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव अ पीसफुल लाइफ? कोई भी नहीं कहता, आपने सबकी तरफ से कह दिया। تو سکون ملے گا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کو تھا کہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدکنے لگتا تھا, تو ان کا چھوٹا سا بچہ ساتھ سویا ہوا تھا, تو اس خوف سے کہ گھوڑا بدکے گا تو بچے کے اوپر ہی نہ پاؤں آ جائے, قرآن پڑھنا چھوڑتے تھے تو گھوڑا کول کام ہو جاتا تھا. اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا تجھے پتا تیرے قرآن پڑھنے کے ساتھ آسمان سے فرشتے اترتے تھے, سکینہ تھی, اور اگر تو نہ چھوڑتا پڑھنا تو صبح تک تیرے گھر میں اتنے فرشتے آتے کہ بستی والے بھی دیکھ لیتے. آپ دل میں کوئی دکھ لیں, سوچیں شوہر جاتے ہوئے کچھ کہہ گئے, بیٹا بات نہیں مانا اور دھڑ سے دروازہ کھولا اور پٹک کے چلا گیا. آج کل یہی مسئلے ہیں نا چھوٹے بڑے, اور بڑے مسئلے میں کیا ہوں گے, اللہ نہ کرے کوئی مالی پریشانیاں نہیں ہیں, کچھ نہیں, کوئی بھی بڑا سا بل آ گیا سامنے رکھے, کیا کروں, سوچ نہیں, دماغ پھٹ رہا ہے, بس آئی ایم آؤٹ آف کنٹرول. نہیں, پکڑے قرآن کھولیں, جہاں سے آتا ہے پڑھنا شروع کر دیں. بلیو می, اپنے غموں دکھوں کو اس قرآن کے اندر ڈبو کے دیکھیں, آپ کو ملے گا اور آپ کے اندر واقعی محسوس ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ابھی تو نہیں سمجھ آتا, کوئی نہیں, پڑھتے رہے. اس کا آسان طریقہ, اگر آپ عربی تلاوت کھولیں, یہ ایک میں آپ کو ٹپ دینے لگی ہوں, ابھی آپ کو قرآن سے سمجھ کچھ آتی ہے کچھ نہیں آتی, تلاوت سنیں کسی کے ساتھ یا کریں اور سامنے اس کا خالی ترجمہ کھولیں. جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ ترجمان القرآن جو ہے نا اس کے ایک سائڈ پہ عربی کے ایک سائڈ پہ اردو ہے, آپ اس پہ کر لیں, تلاوت شروع کریں اور دیکھ اردو میں رہے ہوں اور سن عربی میں رہے ہوں. آپ بلیو کریں کہ اس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا دیکھ رہی ہوں. اور یہ انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی اپ کمنگ کورسز میں ہم کروائیں گے. پہلے ہوتا تھا عربی سنو تو اردو سمجھو, آپ اردو دیکھیں اور عربی کو چیک کریں کہ میں نے اب اتنی دفعہ قرآن پڑھ پڑھا لی ہے, مجھے کتنا کچھ سمجھ آیا ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترتا تھا جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی, پسینے کے قطرے آ جاتے تھے, کپ کپی آ جاتی تھی جسم میں, اور آپ کے اوپر بھی ہوگا. اور قرآن تو خود کہتا ہے سورہ زمر آیت 23 میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے کہ جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں, اور اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بتائیں ہمارے یہ رونگٹے گوز بام کہتے ہیں کیا, گوز بام کھڑے ہوتے ہیں قرآن کا سن کے, اور فرمایا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہوگا کہ ان کو کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور ان کے جسم اور دل نرم ہو کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی بھی دنیا مافیہا سے بے نیاز ہو جاتے تھے, آج بھی ایسا ہے. رمضان کیوں آتا ہے, مجھے تو بہت ساری وجوہات جو دیکھتی ہوں, سب سے اسٹرانگ وجہ یہ ہے کہ اس قرآن سے ریوائول کر لو. دیکھیں نا قرآن رمضان میں کیوں نازل ہوا, شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر آپ دیکھیں تو رمضان اور قرآن ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس رمضان کے مہینے میں وہی سیکھے سمجھے گا غور سے شوق سے جس نے پورا سال اس کی دعائیں کی ہوں گی, ورنہ اللہ معاف کرے کچھ کو تو رمضان میں بھی موقع نہیں ملے گا. اور جبکہ رمضان بچوں کی چھٹیوں کے بغیر آ رہا ہے, اور جبکہ رمضان میں جاب سے چھٹیاں نہیں مل رہی, پھر تو قرآن ہی چھوٹتا ہے. تو پہلے سے پوری تیاری کر کے رکھے. چار چیزیں رمضان کے تقاضوں میں سے آتی ہیں کہ جس کو ہم کم کریں. نمبر ایک, تقلیل الطعام, کم کھانا, قلت سے نا, تقلیل الطعام. ہمارے اسلاف کم کھاتے تھے, اللہ کے نبی کی بھی یہ ہمیں روایت ملتی ہیں کہ آپ کا کھانا بہت تھوڑا ہو جاتا تھا. دوسری چیز, تقلیل الکلام, باتیں کم کرتے تھے. پھر تقلیل المنام, سونا کم ہو جاتا تھا. یہ سب کیوں ہوتا ہے بھلا آپ کو پتا, کہ اللہ سے بات ہو. اختلاط کم کرتے تھے, مکسنگ گیدرنگ سوشلائزنگ کم ہو جاتی تھی آپ کی. آپ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے اس مہینے کا ایک ایک لمحہ لینا ہے. ایک محدث ہیں بہت پیارے, امام شہاب الدین زہری, اپنے وقت کے امام بھی تھے اور حافظ الحدیث بھی تھے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو کہتے یہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن اور کھانے, یہ دو چیزوں کا نام ہے. پھر اسی طرح سے ابن عبد الحکم جی, امام مالک بن انس ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی اب حدیث کی مجلس اور اہل علم کی مجلس سے دور ہوتے اور مصحف کھول کر اسے دیکھ کر تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے. یعنی سارا سال حدیث پڑھاتے تھے, عمل تھا ان کا, بٹ جب رمضان آتا تو مصحف کھول کے پڑھنا شروع ہو جاتے. یعنی اسے یہ نہیں مطلب کہ حدیث کی اہمیت نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ کتنی بڑی بات ہے. और एक आज के दौर के बहुत मारूफ आलिम है माशाल्लाह, मैंने खुद उनकी दो तीन बुक्स पढ़ाई हैं, एक उसमें डोंट बी सैड है, आइडियल मुस्लिमा, आइज करनी। मैं कहती हूँ कि अगर एक नई सोच देने वाले आलिम को पढ़ना हो तो इनको पढ़े। मिस्र से है इनका ताल्लुक, इजिप्शियन है। तो ये कहते हैं कि इमाम मालिक के बारे में आता है कि जब रमजान का चांद तुलू होता तो अपनी किताबें बंद कर देते, कुरान पकड़ लेते और मस्जिद में आकर बैठते, हर वक्त बावजू रहते और ये फरमाया करते थे, हाज शहरुल कुरान ला कलाम फीही इल्ला माल कुरान। कितना प्यारा जुमला है, हाज शहरुल कुरान, ये कुरान हकीम का महीना है, ला कलाम फीही, इसमें कोई कलाम नहीं करना, बातें नहीं करनी, इल्ला मगर माल कुरान, कुरान के साथ, यानी इस महीने में सिर्फ कुरान ही की बातें करनी है, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं होना। फिर इसी तरह आपको तक इमाम मालिक रहमहुल्ला मस्जिद नबी में बिला नागा दरस हदीस दिया करते थे। आपकी हर रोज की मजलिस में उस दौर में भी हजारों लोग होते थे, अहले इल्म आपकी कदर करते थे, वो दूसरे शहर से आते तो इनको अपने घर में ठहराते, इनकी मेहमान नवाजी करते, इनके साथ मिलकर इल्मी मुजाकरे करते, यानी डिस्कशंस होते थे। इसके बावजूद जब रमज़ान आता तो आप अपना ज़्यादा वक्त जो था वो कुरान हकीम के साथ जोड़ते। ये हदीस के इमाम थे, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर वो है, कहते हैं ना कि तबत्तलिल्लाह व तबत्तलिल तब्दीला, कि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए करते थे। इसी तरह आयज अब्दुल्ला अलकरनी ये कहते हैं कि अक्सर सलफ सालेहीन का मामूल था कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता मसाजिद का रुख करते, जिक्र इलाही और तिलावत में मशगूल रहते। जब कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती जिसके किए बगैर चारा ना होता तो फिर घर को लौटते, कहें अपने शोहरों को ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारें। आप ने कहें कि हम आपको इफ्तारी भी दे देंगे, आप बैठे घर आके क्या करना है। मिसाल है, अगर आपके हस्बैंड असर की नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं फिर मगरिब पे भी इंशाल्लाह जाएंगे, तो सिर्फ से मगरिब इधर से उधर थकना, बाहर बाहर की दुनिया, मस्जिद में रहे। अपने बेटों को जिनकी मसाल है के स्कूल के काम में वक्त काम है, इस साल ये भी नोट करें रमज़ान का ये तकाजा है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारें, तो बच्चों का मूड बनाएं, उनको आदत दें। अच्छा बेटा स्कूल से आए, जोहर पढ़ी, अच्छा सो जाओ, जोहर से असर तक उनको सुला दें, असर के लिए मस्जिद में जाओ बेटा और असर से मगरिब वहाँ रहना, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश खाना बना के या जो भी आप जो शौक होता है ना घरों में इफ्तारी के टेबल पे बैठ के खाने का, वो उसको आप पुछवा दीजिए, साथ दे दें। और वैसे ही मस्जिदों में इतना कुछ होता है आप तो जानते ही हैं, हम इस चीज़ में तो माशाल्लाह बहुत ही खुद कफील हैं, लेकिन ये कि जिस हद तक मुमकिन अपने मर्दों को मस्जिद में रखें, और हम खवातीन इसके ऊपर मदद कर सकती हैं। और हम कहते नहीं आप चले गए वो दूध कौन लाएगा, शरबत लाना है, अभी ये करना है, वो मर्दों की भी मत ही मारी रखते हैं। तो बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रखें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का मामूल क्या था, जब रमज़ान शुरू होता तो फतवा देना बंद कर देते और बैठकर जिक्र इलाही, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर और कुरान हकीम की तिलावत में मसरूफ हो जाते। यानी आप इससे अब दूसरी बातों को समझने की बजाय या जहन उधर ज्यादा जाए, अच्छा फिर क्लासों में ना जाएं, अच्छा फिर कुरान छोड़ दें, अच्छा फिर पढ़ना पढ़ाना छोड़ें, नहीं, हम ये छोड़ देंगे तो हमारे पास है क्या। देखिए कि वो ये छोड़ के कुरान पकड़ते थे, तो अगर हमने इसको छोड़ के सोना है और इसको छोड़कर हमने नेट से खेलना है और इसको देखकर कुकिंग ही करते जाना है, तो बेहतर है कि इसको ही करते रहे। ये बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और मुझे हमेशा इंतहाई रवैयों से खौफ आता है। कई लोग ऐसी बातें सुन के कहते हैं कोई नहीं पढ़ना, मैंने पूरे रमज़ान घर से ही नहीं निकलना। वे अल्लाह के बंदी, आप जाती थी कुछ सीखती थी, आपकी वजह से कुछ सीखता था, तो आज के इस गए गुजरे दौर में आपकी मेरी ये नेकी ही कबूल होगी। मैं आपसे सबसे कह दूं मैं इस साल दौरा कुरान नहीं करती क्योंकि मैंने अपने घर में बैठकर इबादत करनी है, मैं तो इसको प्रेफर नहीं करूंगी। क्यों? कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर मैं खुद कितना सीखूंगी और मेरे साथ आपका फायदा होगा। पर्सनल इबादत की बहुत अहमियत है, उसका वक्त है और सारा दिन थोड़ी को पढ़ाता। अगर 2-2.5 घंटे मैं आपको पढ़ा दूं तो मेरे पास स्टिल 20-22 घंटे बढ़ी हैं, मैं उसमें जितना मर्जी वक्त लगाऊं। सिर्फ ऑर्गेनाइज करें। इस साल इंशाल्लाह हमारा दौरा कुरान आएगा, इस साल का थीम ही हमारा टाइम वेस्टर्स और टाइम मैनेजमेंट है। आज देखा क्या गया कि वक्त किधर जा रहा है। पहले आप देखिए, लोग घुलते थे, मिलते थे, घरों में आते थे, जाते थे, काउंसलिंग भी थी, एक हलचल थी। अब हर बंदा कोने खुदरे में घुसा अपने नेट के साथ खेल रहा है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बहुत कुछ सीखेंगे वाला सरिनल इंसान लफी खुसर पे, अगर अल्लाह ने मौका दिया। लेकिन यह कि अपने वक्त को अभी से ही मैनेज करना शुरू कर दे। और आप देखिए कि हाफिज़े कुरान जो सलाफ थे ना, वो भी कुरान खोल कर पढ़ते थे, मुसहफ खोलते थे, कहते थे कि हम कुरान के अल्फाज को देखना भी चाहते हैं, हम इसको अपने जहन और अपने दिल की तख्तियों पे लिखना चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि किसी का खत आया आपको, एक दफा पढ़ लिए, मैसेज आजकल खत कहाँ आते हैं, मैसेज ही आते हैं, किसी का अच्छा मैसेज हो तो बार बार नहीं पढ़ते, बार बार देखते हैं ये लिखा है। अब तो वो लिखने के साथ साइन भी बना देते हैं, कहीं वो दिल धड़क रहा होता है ऐसे लगता है अभी इसको इमरजेंसी कॉल करो, वो देखिए आपने एक वो आइकॉन है जो इमोजी में वैसे दिल धड़कता है, तो मैं उसको देखती हूँ तो मुझे एम्बुलेंस याद आ जाती है कि फटाफट बुलाओ ये दिल आखिरी दमों पर ना। तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि हमें इससे मोहब्बत होती है। फिर इसी तरह आपने वो वाक्य सुना होगा, हनफ बिन कैस थे, बहुत ही प्यारे ताबई थे, इन्होंने कुरान की आयत सुनी, सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 है कि लकद अंजल ना इलेकुम किताबन, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की, फी ही जिक्रुकुम, इसमें तो तुम्हारा जिक्र है, अफला ताकिलून, तुम सोचते नहीं हो, अकल नहीं रखते हो। कहने लगे अच्छा इसमें तो मेरा जिक्र है, तो मैं देखता हूँ, पूरा कुरान खोलना शुरू हो गए, इधर पढ़ उधर देख कर कर, कहते मेरा जिक्र किधर है। वो वर्क गर्दानी के दौरान सूरत तौबा की आयत 102 मिल गई, खलत व अमलन सालिहन व आखरा सईया, कि कुछ लोग हैं जो अच्छे काम करते भी हैं और बुरे भी करते हैं, अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं। कहने लगे ये हूं मैं, इससे पहले उन्होंने जब देखा तो काफिरों की आयतें पढ़ी, कहा मैं तो ये नहीं हूं, और जब ईमान वालों की आयतें पढ़ी तो कहा मैं इतना नेक भी नहीं हूं। जब इस आयत 102 पे पहुंचे तौबा की, कहते मिल गया मिल गया, मुझे अपना जिक्र मिल गया। अब बताइए ये अंडरस्टैंडिंग कब थी, जब समझे थे ना। आप भी ढूंढे अपने कुरान को, इस एक्टिविटी से ढूंढे मैं इस कुरान में से किस किस हुक्म पे अमल करती हूँ। चले आज मैंने इस तरह पढ़ना है, पहला पारा खोलें, हर आयत पढ़े की मुसलात, हाँ मेरी नमाज कैसी है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह गुड, वातुस ज़कात, ज़कात कैसी है, पिछले साल की दी थी नहीं, कुछ रह तो नहीं गया, अगले साल क्या करना, इस तरह बातें करें। यानी कुरान के साथ आपका वो ताल्लुक बन जाए जो दोस्तों के साथ और सहेलियों के साथ है। कोई हमें सिखाता है दोस्तों से बातें कैसी करते हैं, हमें खुद ही आता है। इसी तरह कुरान पाक से भी बातें कर लीजिए, और सहाबा कराम में से तो कुछ इतनी कसरत से तिलावत करते थे कि 3 दिन 7 रातों और 40 दिन में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। ये इब्ने माजा की रिवायत है 1105 की। तो कसरत से कुरान पढ़े। इसी तरह आपको पता है कि सालिम सहाबी थे, गुलाम थे, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने इनको आज़ाद किया हुआ था, इतनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करते थे कि एक रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ईशा की नमाज के बाद वापस आते हुए खड़े होकर उनकी आवाज़ सुनती रही। अल्लाह के नबी सल्लम को पता चला, आप भी उम्मुल मोमिनीन के साथ जाके खड़े हो गए, तो सालिम की आवाज़ से आपको कुरान सुनकर इतना अच्छा लगा कि आपने फरमाया ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी उम्मत में ऐसी खूबसूरत आवाज़ वाले आदमी पैदा किए हैं। ये इब्ने माजा की रिवायत 1100 है। क्या पता चला कि कोई अच्छी आवाज़ से पढ़ते तो सुने। और मैं अक्सर अपने आप को भी और आपको भी कहती हूँ, गोल दे देती हूँ, शायद मेरे लिए सदका जारी हो, आप 5 कुरान पढ़ें। पर कैसे, पढ़ा एक, एक सुने, एक पढ़े, एक तिलावत में पूरा करें। बस आप देखिए ना कि रमज़ान है, तिलावत सुनना शुरू कर दें। टेलीफोन पे आजकल बेहतरीन से बेहतरीन सेट्स हैं, बहुत से आइकॉन्स हैं, अगर आप में से किसी को गाइडलाइन चाहिए होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। और आपको एक कारी चूज़ करें जिसके साथ इस साल आप पूरा रमज़ान में कुरान सुनते हैं, पहले दिन से शुरू करें, वो पढ़ें, बेस्ट थिंग है साथ पढ़ें, ऐसे नहीं लगता कि दिल साथ जुड़ रहे हैं कुरान के। इस तरह करें, सामने पारा खोले, कारी कोई भी चला लीजिए, आपकी चॉइस है, फास्ट है स्लो है। आजकल हम ओस्लो में इतनी सबकर की तिलावत सुन रहे हैं और साथ उसके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उससे वो माहौल होता है कि ऐसे लगता है कि अभी फरिश्ते उतर आएंगे, एक खूबसूरत आवाज़, और वो रोते हैं कहीं और कहीं उनकी आवाज़ में एक जोश होता है। तो आप एक कुरान सुनने का पूरा करें, बाकी फिर साथ बताती जाऊँगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने अबू मूसा अल-अशअरी के लिए क्या कहा था कि इनको लहने दौदी दिया गया, ये भी इब्ने माजा की रिवायत है 1102 नंबर की। इब्ने मसूद इतनी खूबसूरत तिलावत करते थे कि अल्लाह के नबी ने उनको मुबारक दी कि इब्ने मसूद तू कितना अच्छा पढ़ रहा है, और हर एक जो कुरान पढ़ना चाहे उसको चाहिए कि इब्ने मसूद की तरह पढ़े। ये भी इब्ने माजा की रिवायत है 114। फिर इसी तरह देखिए कि हमारे ताबईन, तबा ताबईन, बाद में जो भी लोग आए उनमें से अक्सर की रातें क़याम में गुजरती थी। क्या मुल्लैल, हम तो रमज़ान के साथ इस लफ्ज़ को जोड़ते हैं, नहीं, तवील सूरतें जो उनको याद होती थी वो रात में पढ़ते थे, और रमज़ान में तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो इमाम सुफियान, सॉरी कौन है पता, हमने इनके नाम ही सिर्फ सुने होंगे, ये इतने बड़े बड़े हमारी उम्मत के शाहकार गुजर गए हैं कि वल्लाही कि हम इनका हक नहीं दे सकते। आज आप कोई किताब खोलें, इन लोगों के नाम होते हैं रवायतों में। इनका हाल क्या था, जब रमज़ान आता सारी बातें छोड़ देते और सिर्फ कुरान की तिलावत की तरफ या कुरान ही पढ़ते थे। फिर इसी तरह इमाम इब्ने रजब कहते हैं कि हमारे सलफ जो थे वो इतनी कसरत से कुरान पढ़ते थे कि कुछ तो सिर्फ 3 दिन में पढ़ लेते, लेकिन आम तौर पे जो थे वो 10 रातों में पढ़ते थे। तो कोई किसी भी तरह से देखिए, और बाज़ लोग जो होते हैं वो आखिरी अशरे में पढ़ते थे। तो एक बात जो मेरी इसको कह लीजिए कि इन सारी बातों के बाद आई कि आपने मैंने कसरत से कुरान पढ़ना है, अपनी ज़ुबान को तर करें। और आप देखिए वो वाक्य भी आपने औरत का सुना हुआ ना, 8 दिन तक अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ रही और कुरान के सिवा कुछ नहीं बोलती थी। और जब बेटों को मिले उनके और उनसे कहा कि तुम्हारी अम्मा जो है ऐसे है, तो उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है, हमने तो पिछले 40 साल में अपनी माँ की जुबान से कुरान के सिवा कुछ नहीं सुना। क्या आप और मैं हैं ऐसे? क्या आपके अपने हस्बैंड से ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि आप आपस में लाड भी करें और अगर आपस में बात भी समझानी हो तो कुरान के साथ करें? क्या हमारा अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल है कि हम एक आयत कुरान की पढ़ें आपका बच्चा समझ जाए कि अम्मा क्या चाहती हैं? ये लेवल है तिलावत कहते ही उसको है कि जिसमें समझ आए। और आपको पता है कि ये हमारा बरसगीर पाको हिंद का दौर देख लीजिए, ये पिछली सदी यानी तकरीबन हमने अपनी आंख जब खोली और उससे पहले भी 60-70 साल तक ये रिवाज था कि घर के बड़े सहरी पे उठ जाते थे, कुरान खोल कर पढ़ते, घर में आवाज़ें आती थी, होता था कि नहीं? फिर फजर के बाद दुआएं पढ़नी, अस्कार करने। क्या वाइस था ये माहौल घरों का ख़त्म नहीं हो रहा? मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से कुछ 10 साल पहले की मिसालों में याद आता है जब नया नया मॉर्निंग चैनल शुरू हुआ था टीवी पे। जब से टीवी हमने अपनी आंखों से देखा तो शाम को नशरियात आती थी, एक ख़ास वक्त होता था, लोग पहले ही खड़े हो जाते थे, टुन टुन लाइन आ रही है और एकदम फिर वो इकरा का सबक और कारी सा पढ़ते थे, और इसी तरह एंड पे रात 11 बजे के करीब पहले वो राग रंग सुनाते थे जिसको लोग बड़ा मजहबी फ्रीजा समझ के सुनते थे, और आखिर में कहते अच्छा जी अब जाएँ सो जाएँ, हम भी सो रहे हैं। ये जो 24 आवर्स की नशरियात है, इन्होंने लोगों का सोना जागना ही ख़राब कर दिया। मुझे आज भी याद है कि जब PTV पाकिस्तान से सुबह की नशरियात शुरू हुई थी तो उस पर काफ़ी रिएक्शन हुआ था, और लोगों ने उसकी तावीलात क्या दी थी कि खबरें सुनने के लिए सुबह होगा, और कुछ ने उस वक्त ये कहा था बच्चों को कार्टून दिखाने के लिए। फिर एक वो वक्त आया कि माएँ बच्चों को उठाने के लिए TV यूज़ करने लग गई, अब तो कोई फ़र्क ही नहीं लगता, हाथों में आधी रात को खोल के जो मर्जी देख सुन ले। तो हमारा वक्त इस तरह से ज़ाया होने लगा, और ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए हैं वो एक सबक है इस बात में कि हम अपने आप को भी देखें कि हमारा वक्त ज़ाया किधर होता है, कितना होता है। कई लोग ऐसे थे माजी में, ऐसे उस्ताद थे या नेक लोग थे कि वो किसी से मुलाकात करते थे, यानी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी के मामलात के बारे में लिखा गया कि दिन रात रमज़ानुल मुबारक में तिलावत होती, बाद शागिर्दों को नमाज मगरिब के बाद सिर्फ इतनी देर मुलाकात की इजाज़त होती जितनी देर तक वो चाय पीते, यानी खुद चाय पी रहे तो उस दौरान अगर कोई आके बात करना पूछना चाहे तो पूछ ले। वो रमज़ानुल मुबारक में अपनी डाक भी बंद कर देते। आज की डाक क्या है? ईमेल, व्हाट्सएप, कितनी दफ़ा दिन में चेक करते हैं? कुछ तो ऐसे खड़क से जवाब देते हैं, मैं कहती हूँ ये देख रहे होते हैं, कोई मैसेज आया हम फ़ौरन जवाब दें। है तो बात अच्छी कि आपको फ़ौरन जवाब कोई दे दे, लेकिन नज़र में होता है ना। आप देखिए ईमेल भी जब तक थी तब भी दिन में 2 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब हाथों में गैजेट आ गए, वो डाक नहीं करते थे और दूसरों से मुलाकात करना भी गवारा नहीं करते थे। मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी हर रात तहज्जुद की नमाज में 2 पारे तिलावत करते, जबकि दिन को भी चलते फिरते कुरान की तिलावत विरदे जुबान रहती। अब वो अपने एक शागिर्द के साथ किसी के यहाँ मेहमान गए, यानी अपने शागिर्द के घर एज अ गेस्ट के, शागिर्द ने इन्हें कमरे में ठहराया ताकि आराम कर लें। रमज़ान का महीना था, जोहर की नमाज के लिए शागिर्द उठाने आया तो मौलाना तिलावत कर रहे थे। नमाज के बाद दोबारा इसी कमरे में आ गए, शागिर्द असर के वक्त उठाने आया तो आप फिर मुसहफ खोले तिलावत कर रहे थे, असर से मगरिब तक का वक्त भी उन्होंने उनको तिलावत करते हुए पाया। आप बताइए वक्त पे नज़र रखनी पड़ती है कि नहीं? आज वो चीज़ नहीं रही। फिर इसी में आप देखिए कि एतिकाफ़ की जो एक सुन्नत है ना, उसका भी ताल्लुक देखें तो कुरान के साथ है। जो लोग एतिकाफ़ में बैठते थे उस दौर में भी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग जो बैठते हैं वो इसी तरह से 10 रातों में कुरान पाक पूरा करते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, यानी अगर आज का मुसलमान और रमज़ान की रातें देखें तो मनपसंद तरीके हैं तिलावत के, तेज तेज पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, एक पारा, दूसरा पारा, तीसरा। लेकिन बहरहाल ये सारी बातों को सोचते रहें कि हम सब के लिए ये बेहतरीन तरीका है, ये बेहतरीन वक्त है। कम से कम जो तरावी का कुरान है उसको मर्द समझ लें, देखिए मर्दों का कह लीजिए कि उनके पास इतना टेम्पर नहीं होता कि वो औरतों की लंबी बातें सुने, लंबी कहानियां सुने, लेकिन अगर एक पूरा कुरान, यानी आप अपने मर्दों को, अपने बेटों को, भाइयों को, जो भी हैं, अगर इस चीज़ पे माइल कर लेना कि आपने एक भी दिन की तरावी मिस नहीं करनी, और जब तरावी मिस नहीं करनी तो उसमें जो कुरान पढ़ा जाए उसको खोल लें, छोटा मुसहफ ले लें, और शुरू से लेकर जिस जगह एक दिन जाते हैं फिर वहीं पूरा महीना जाएं, या कम से कम उसी पारे को फॉलो करें, तो आप देखिए पूरा कुरान होगा आपने। मैंने इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है कि इस रमज़ान में हमने खुद भी कुरान से कसरत से जुड़ना है और घर वालों को जोड़ना है। हर दफ़ा हम अपने लिए कोशिशें करते हैं लेकिन दूसरों के साथ भी हो। और एक और चीज़, तरावी उस जगह जाके पढ़ें जो ठहर ठहर के पढ़ता है। बाज़ लोग सपारा पूरा करने के लिए भाग रहे हैं और मुकाबले हो रहे होते हैं, चाहे किस मजे में जल्दी ख़त्म होती है। दूर लोग इसलिए जाते हैं कि वो जल्दी ख़त्म करा देते हैं और उतना वक्त आने में लग जाता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा भी होगा और आपको मुझे यानी एक वो रूहानियत मिलेगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रमज़ान के नाते से हमेशा ही दौरे कुरान का नाम आता है ना, ये आज के दौर के हिसाब से मैं कहती हूँ कि एक गनीमत है। इस लिहाज से गनीमत है कि इसमें बेशक वक्त लगता है, एफर्ट लगती है, घर से निकलना, घर में आना जाना जो भी, लेकिन हमारे पूरे मसरूफियत के माहौल में से अल्लाह ताला हमें निकाल कर दूसरी तरफ ले आता है। हर लिहाज से आपने, मैंने रमज़ान में तिलावत कुरान को बेहतरीन लेना है। ख़ास तौर पर आपको पता है हमारे इस्लाफ आखिरी अशरे में, जिसमें लैलतुल कदर भी आती है और जिसकी एक रात 1,000 रातों से बेहतर होती है, उसमें क्या अहतमाम करते थे। उनको पता था अल्लाह के नबी की वो हदीस हजरत अबू हुरैरा से जो है बुखारी में 1901 की, कि शबे कदर में ईमान और हसूले सवाब की नीयत से जिसने क्याम किया अल्लाह ताला उसके पिछले गुना माफ़ करता है। तो ये तो थोड़ा सा सहाबा का कुरान के साथ ताल्लुक था ना, लेकिन आप देखिए कि आज हमने तकरीबन 10 सिफात को देखा है जो सूरत अहज़ाब की है। आपके मेरे लिए आज जिस चीज़ के ऊपर मैं वाइंड अप करना चाहूँगी वो क्या है कि अपने ऊपर नजर रखें। आप और मैं इस रमज़ान को अगर एक ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग कोर्स समझ के गुजारते हैं, आप देखेंगे कि वो आपके लिए बेहतरीन मामला है। करें क्या, नंबर एक जो ख़वातीन हाउसवाइफ है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, उन्होंने खुद को खुद ही मैनेज करना है। अपने पूरे घर को अभी से लेकर इस नज़र से देखें, उचटती निगाह से, कि इस एक महीने में, हम अगले पिछले दिनों को अगर छोड़कर सिर्फ एक महीने की भी बात कर ले, एक महीने में मैंने पूरे घर को इस तरह से सॉर्ट आउट कर देना है कि रमज़ान में मेरा वक्त कम से कम इन चीज़ों पे जाए। फिर इसी तरह जो जॉब करती हैं सिस्टर्स, तो उनको कोशिश करनी चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि उनका हक बनता है कि अगर वो इस एक महीने में छुट्टी कर ले तो क्या होगा। हर एक वर्कर के पास कुछ लिमिट होती है, फुल टाइम भी अगर आप वर्कर हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो रमज़ान में छुट्टियां ले लेते हैं। ठीक है, कम कर लें आवर्स, पूरे नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा टाइम है जिसमें आप कहीं जाके कुछ सीख सकते हैं या आपके पास इबादत का मौका है, आप उस वक्त को शुरू से ही अपनी छुट्टियों के अंदर से निकलवा लीजिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि आज के दौर में तो हम अपने घर बैठे भी दीन सीखते हैं। ये अलग बात है, पता नहीं किस मूड में सीख रहे होते हैं, किस एंगल से सीखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी दी बेस्ट को छोड़कर सिर्फ गुड पे इक्तफा किया दुनिया में। मतलब एक लॉन का सूट है, बहुत खूबसूरत, सॉफ्ट भी है, जो भी कह लीजिए, कपड़े की बातें औरतों को समझ जल्दी आती हैं इसलिए बता रही हूँ, बेहतरीन ब्रांड की सॉफ्ट अच्छी खूबसूरत चीज़ को छोड़कर क्या सस्ती लेते हैं? नहीं लेते ना, क्यों? हम कहते हैं लो पैसे होते, शायद इसीलिए हमारा अपनी ज़ात पे जो खर्चा आता है उसको अगर देख ले तो हम कहते हैं हमारा हक बनता है। ठीक है, वो एक अलग बहस है, तो क्या नेकी के मामले में लिस्ट पे आएंगे? आप अभी से प्लान आउट करें कि मैंने दी बेस्ट दर्जे की क्या नेकी करनी है। फिर इसमें आप देखेंगे कि आप अपने साथ दूसरों को लेकर चलें। माशाल्लाह आप में से कई साथी जानते हैं कि हर साल आपके लिए कुछ एहतमाम किया जाता है, हर जगह जहाँ भी कहीं कुरान की क्लासेस होती हैं तो वहाँ कोशिश की जाती है कि हर बंदा अपनी जगह पे एक छोटा सा बीज बन जाए और वो वहाँ से लोगों को दीन की दावत दे। मैं आप सबको एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि आप में से हर सिस्टर अपने एंगल से सोचे। मैंने अक्सर लोगों को सोचने का एक अंदाज़ दिया है, मसलन जैसे नॉर्वे में ना, वो कहते हैं नहीं, जब सिर्फ स्कूल में होता है ना तो वो, कुछ साथियों का दिल कर रहा होता है कि सिर्फ स्कूल में हो, क्यों एक तो सारा स्टाफ साथी इकट्ठे हो जाते हैं, और दूसरे वो कहते हैं नहीं जब साइड पे हम करते हैं ना फिर लोग उधर उधर चले जाते हैं, कम होते हैं, फिर अपने मेन स्कूल में कम दिखेंगे। तो मैं उनसे एक सवाल करती हूँ, मिसाल है कोई एक जगह का नाम रख लेते हैं आप, इधर वेम्बले में हैरो का नाम ले लें, कहते हैं जिनको आना है वो स्कूल में आ जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये बताएं कि हैरो में फुलां मस्जिद या फुलां घर में करने से कोई एक बंदा ऐसा आता है क्लास में जो इधर स्कूल में नहीं आएगा? तो ऑफ कोर्स हर जगह करने से 8-10 होते। वो कहते नहीं जहां भी करेंगे थोड़े थोड़े लोग बैठे होंगे। वो कहती वो थोड़े कम नहीं है, वो लोग अगर आपके स्कूल पे नहीं आ रहे थे ना सुनने, तो अगर आप उनके पास करीब चले गए कि वो आ जाएं तो फिर ये करना चाहिए। बात समझ गए? आप अपने घर पे अरेंज करती हैं, कोई भी नहीं आता, आपकी बेटी बैठ जाती है जिसने इधर नहीं था आना, आप अरेंज करें। अभी टाइम है नफ, अल्हम्दुलिल्लाह, प्लानिंग, इरादा, तरीका सब कुछ आपके साथ शेयर किया जा सकता है। आप इस वक्त जहाँ से भी आए हैं, हर प्लेटफॉर्म से आप अपने अपने इलाकों में दौरे कुरान का अहतमाम करवाएं। आपका घर किसी मस्जिद किसी जगह में, जो आप साथी एक जगह के, अगर वो एक जगह जमा होते हैं अपनी सहूलत से सुने, अगर आप घर से ही सुनते हैं, मिक्सलर के थ्रू सुनते हैं, फेसबुक से सुनते हैं, कहीं से, कोशिश करें कि उसका ड्यू हक दे, बैठ के कुरान खोल कर जो कुरान सुना जाता है उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलिए, जजाकल्ला खैर। अल्लाह ताला सबको एक एक मिनट का बेहतरीन बदला अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतुबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين।